या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो।
शांति। 1 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक ये 21 दिवसीय भट्टी आज से आरंभ होने जा रही है, असुर सुहारनी भट्टी। लंबे समय से हम सभी भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर भट्टियों का लाभ ले रहे हैं, और जैसे जैसे इन भट्टियों में हम अपनी सहभागिता निभाते हैं तो जहां प्रगति का अनुभव भी होता है, वहां हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियां भी भयानक रूप से सामने आती हैं, जिनको हम नकार नहीं सकते। और वो सूक्ष्म कमजोरियां हर एक की अपनी अपनी होती हैं, लेकिन इस पथ पर अनेकानेक हमारे अपने ही संस्कार अलग अलग रूप से हमारा सामना करने के लिए आते हैं, चाहे वो काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष, अनेकानेक विकार चारों तरफ हमारे मंडराते रहते हैं। बाहर से चेहरे में भले अलौकिकता, दिव्यता, रूहानियत सब दिखाई देती है, लेकिन जो आंतरिक जगत है, अंदर का संसार है, भीतरी संसार है, जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो खौफ लगता है, क्योंकि बहुत खौफनाक अंदर में बेकार छुप कर बैठे हुए हैं इस देह रूपी गुफा के अंदर। जैसे गुफाओं के अंदर जाने से डर लगता है, ऐसे बहुत अंधकार है अभी भी इस देह रूपी गुफा में। और अंधकार को भगाने का प्रयास करने के बजाय उसका सामना करना है। तो आज का जो विषय है अजामिल संहार। बाप दादा मुरलियों में अनेकानेक अस्त्रों का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन अस्त्रों को बाबा के महावाक्यों तक ही सीमित कर देते हैं, जो सुना केवल वहां तक ही रह जाते हैं, उसकी गहराई में होते हैं, या उन महावाक्यों को अपने साथ कंपैरिजन करें, तुलना करें अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन शैली से, तो लगता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत गहरे जाना भी बाकी है, ज्ञान का कभी नहीं समझा भी, ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है जैसे अभी नव जीवन प्रदान हुआ है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। बाबा कहते हैं माया भी रुस्तम के साथ रुस्तम होकर सामना करती है। तो ये भट्टी में तीन मुख्य रूप से इसके क्राइटेरिया रहेंगे कि एक तो जो भी स्पीकर आएंगे अगले 21 दिन तक, सबसे पहला तो ये पात्र कौन है, शास्त्रों में उसका वर्णन किस तरह से है, और दूसरा उस पात्र को इस ज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, अपने जीवन में वो किस रूप से बैठा हुआ है, और तीसरा उससे मुक्ति कैसे पानी है। तो इन तीन विषयों के इर्द गिर्द ही सभी आने वाले समय में उस इन विषयों के अंतर्गत ही अपना पूरा फोकस रखेंगे तो हम उसको गहराई से समझ सकेंगे। और इसके साथ एक चौथा भी कर सकते हैं, सभी अपने अपने स्तर पर जो बाबा के महावाक्य हैं उससे संदर्भित थोड़े से, ताकि उस चिंतन में थोड़ा और पावर आ जाए। तो ये बाबा के महावाक्य हैं 16 अक्टूबर 1969। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक से, मस्तक की मणि से, कुछ वाणी से, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक की मणि से खुशबू लेते हैं। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तिष्क के मणि को ही देखते रहो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण ये है, मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो, रूप को न देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे समझो कि सांप को देख रहे हैं, सांप के मस्तिष्क में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो, सांप को देखा और सांप ने काटा, सांप तो अपना कार्य करेगा, सांप में विष भी होता है ना, कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है, तो हम सब कौन है, विशेष सांप मणि वाले हैं। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे, आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो मणि को ही देखो, मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे, लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला की मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर ये जो कंप्लेन है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि की परख से कहाँ कंप्लेन कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। बाबा के महावाक्य हैं। तो ये जो अजामिल की स्टोरी है, कहानी है, जो शास्त्रों में दिखाते हैं भागवत में, जानते भी होंगे अजामिल जो एक ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञाता था, बहुत सदाचारी शिष्टाचारी शीलवान गुणवान, लोकहित में सदा तत्पर रहता था। और उसके पिछले जन्म में भी वो विष्णु का परम भक्त था। तो एक दिन वो जंगल से कुछ पूजन की पूजा की सामग्री लेने के लिए गया और वापस लौटने लगा। तो रास्ते में उसे एक दृश्य दिखाई दिया और वो दृश्य एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को उसने देखा एक दूसरे की बाहों में समाते हुए। और वो देखते ही उसकी सारी उत्तेजना जागृत हो गई, तमोप्रधान संवेदनाएं काम की संवेदनाएं वो सारी तरंगें उसके शरीर में दौड़ गई। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछले जन्म में विष्णु का परम भक्त, जिसने इतनी भक्ति की हो, और अगले जन्म में भी भक्त जो इतनी पाठ पूजा करता हो, नित नेम पूजन शास्त्र पढ़ना वो सब चीजें करता हो, फिर केवल देखने मात्र से उसका सारा वो ज्ञान योग धारा का धारा रह गया। तो हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहां तक हैं। तो उसकी जो संवेदना है, उसकी उत्तेजनाएं थी, वो उसके बश के बाहर हो गई। उन उत्तेजना ने उसको पागल कर दिया। उस दृश्य ने उसको पागल कर दिया और उसके विचार सारे काम के इर्द गिर्द घूमने लगे। वो जो बेश्या थी, जो जंगल में एक पुरुष के साथ देखी गई, वो बेश्या के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया, प्रभावित हो गया। अब उसका ध्यान ज्ञान की बजाय उसको प्राप्त करने में सारी चिंतन धारा चेंज हो गई। मन में बस एक ही संकल्प रह गया कि भी किसी भी तरीके से अब इसको प्राप्त करना है। तो जाने के बाद, घर में जाने के बाद जैसे पता किया कि ये तो बेश्या है, लेकिन फिर भी अब उसके मन के ऊपर भूत सवार हो गया, किसी ना किसी तरीके से ये तो प्राप्त करना ही है। हालांकि वो शादीशुदा था, माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन फिर भी काम का भूत, काम वासना की आंधी, वो तूफान उसके मन को रोक नहीं सका। फिर बह गया उसमें वो, जैसे तैसे करके उसने संपर्क किया बेश्या से। उसके सौंदर्य में वो लट्टू हो गया, प्रभावित हो गया, अपने सारे पुरुषार्थ को डुबो दिया। और एक दिन उसके संबंध संपर्क में आ गया वो। जैसे ही उसके संबंध संपर्क में आता है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मां बाप को छोड़ दिया, ये काम वासना ऐसी है अजामिल के रूप में। जितना भी शास्त्र पढ़े थे सारे दरकिनार हो गए, चकनाचूर हो गया उसका पुरुषार्थ। इसलिए बाबा एक ही पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे तुम्हें पावन बनना है। केवल एक ही कर्तव्य के लिए भगवान का वतन हुआ है, पतितों को पावन बनाना। और सब विकारों की जड़ ये है काम विकार, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है, दूसरे विकारों के लिए महाशत्रुनी कहा जाता है। दूसरे विकार हो तो चलेगा, लेकिन काम विकार हो तो हड्ड गुड बाबा कहते पांचवी मंजिल से गिर जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो इसे हम हल्की से न लें, बल्कि इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखें कि कैसे उसने अपना सारी साधना, सारी तपस्या, वो सारे शास्त्र, जो भक्ति भाव उसके अंदर था, जो लोगों के चित्त में उसके प्रति जो सम्मान था, इतना ऊंचा एटीट्यूड, दृष्टिकोण था, वो सारा धरा का धरा रह गया एक सेकंड में सत्यानाश। तो ये कहां से हुआ? केवल देखने से। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा धोखेबाज क्या है? आंखें। जो भी हम दृश्य देख लेते हैं वो सीधा हमारे मन में छप जाता है। इसलिए बच्चों को जो पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है ताकि उनमें मन में छप जाए। उसके बाद फिर शादी कराई जाती है तो स्मृतियां उसकी रखी जाती है, एक एल्बम बनाई जाती है ताकि उनके मन में घुस जाए अच्छी तरह से, एक दो को छोड़ के ना चले जाए। इतनी सारी फोटो एल्बम, वीडियोग्राफी, सेल्फी, फिर बाद में बार बार उसको देखते रहते हैं। तो जो सारी स्मृतियां हैं मन में छप जाती हैं। ऐसे ही इन आंखों ने पूरे 5,000 वर्ष में क्या क्या देखा है, वो सारी स्मृतियां अंदर में हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सब अंदर में ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम विकारों से मुक्त हो गए, सब अंदर में है। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, किसने भेजा, एक संत हैं, सारी सभा को संबोधित कर रहे थे, माताएं बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस सभा में कौन है जो नेगेटिव विचारों के प्रति उनका कंट्रोल हो गया है। तो बहुत सारे भक्तों ने हाथ उठाया, माताओं ने, कन्याओं ने, बहनों ने, कि हमारी दृष्टि चंचल नहीं होती है। लेकिन संत ने कहा हमारी तो अभी भी होती है। जो सुनाने वाला कह रहा है वो कितनी बड़ी महानता है उसकी कि उसे एक्सेप्ट कर रहा है अभी भी। लेकिन बाबा जब हाथ उठवाते हैं हमारे से तो हम तो हमेशा कौन सा हाथ उठा देते हैं? दोनों हाथ उठा देते हैं। तो ये सारी स्मृतियां अभी भी अंदर हैं। 4 दिन पहले एक फोन आया हमको किसी का, संडे के दिन में छुट्टी होती है तो कहीं पहाड़ी पर गए थे कोई, तो ये जो अजामिल वाला दृश्य देखा होगा उन्होंने, तो वो जैसे एकदम अंदर से उद्वेलित हो गए, एकदम बिल्कुल विचलित हो गए। तो बोला अभी हमको क्या करना है? तो एक सीन देखने से अब भी हम अगर विचलित हो रहे हैं तो ये सिद्ध करता है कि पुरुषार्थ हमारी रगों में नहीं दौड़ रहा अभी भी। ज्ञान का जो खून है वो हमारी रगों में अभी तक गया नहीं है। और आज के परिदृश्य में अगर हम देखें संसार में, तो काम तो चरम अवस्था पर है। स्कूलों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सारी जगह काम का कब्जा है। जहां देखो काम ही काम। प्राचीन काल में मां बाप बच्चों को, दादा दादी अपने पोतरे दोतरे को कहानियां सुनाया करते थे, शास्त्रों की, बड़े बड़े ऋषियों की, लेकिन आजकल की डेट में सबके पास खिलौना है, सबकी अपनी अपनी कहानी एक नई कहानी बन गई है। और वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। माँ बाप को भी उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माँ बाप खुद ही उसमें डूबे हुए हैं। जो विद्या थी वो विद्यार्थी अब वो विद्या की अर्थ ही निकाल रहा है। जो संस्कार दिए जाते थे अब उन संस्कारों का संस्कार हो चुका हुआ है। यही अजामिल के सारे गुण हैं। लेकिन बाबा कहते मैं अजामिल जैसी आत्माओं का भी उद्धार करने आया हूं। वो रहमत का दरिया है, रहम दिल है, वो रहम का सागर है। तो हम सब आत्माओं के अंदर जो विकारों की जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, उतारने के लिए हमें अनेकानेक मार्ग बताते हैं बाबा। ऐसे करो, ऐसे करो, चलो ऐसे नहीं होता फिर ऐसे करो, ऐसे करो। असंख्य मार्ग हमें बताते हैं, असंख्य पुरुषार्थ के रास्ते बताते हैं। तो अगर हम सतत रूप से इस पर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी असुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखना है वो जो अजामिल था कहां से उसकी उत्तेजना जागृत हुई, आंखों से। इसलिए बाबा कहते हैं अभी लास्ट मुरली जो हमने सुनी, कहां देखो, सबके मस्तिष्क में, मस्तक पर देखो, मस्तक मणि को देखो। अब मस्तक में मणि दिखाई तो देती नहीं है, बाबा तो कह के चले गए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना जारी है। और उसके साथ साथ उसके ऊपर और गहरा चिंतन हमें स्वयं करना होगा, क्योंकि देह दिखाई देगा पहले तो, जन्म जन्म की आदत पड़ी है। तो सबसे पहले तो है देह का दर्शन, वास्तविकता इसकी क्या है। ये जो देश अंदर से बाहर से जो दिखाई दे रहा है, सभी अभी अपने अपने आप को देखेंगे सुनते सुनते ही, किस देह के अंदर है क्या। सिर के सिरे से लेकर अगर पांव तक देखें तो देह के अंदर क्या है, इस नाक के अंदर क्या भरा हुआ है। जो तोते जैसी नाक दिख रही है उसके अंदर क्या भरा हुआ है। ये जो होंठ है, ये मुख है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ये जो शरीर है इसके अंदर क्या भरा हुआ है। जो हमने रात को खाया था बहुत अच्छे अच्छे फल, गुलाब जामुन, अभी वो किस रूप में अंदर है। जब तक हम स्वयं के देह की वास्तविकता को नहीं जानेंगे, जब तक हमें स्वयं के देह के से वैराग्य जागृत नहीं होगा, तब तक दूसरों का देह आकर्षित करता ही रहेगा। सबसे पहला वैराग्य हमें देह, स्वयं की देह से चाहिए। जितना हम भीतरी जगत में जिएंगे उतना ही हम अपने आप को परख सकेंगे, पहचान सकेंगे, अपनी कमी कमजोरियां हमारे हाथ में आएंगी। तो ये जो अजामिल है मुख्य रूप से पांच रूपों से प्रभावित हुआ, जो कल भी चर्चा की थी परसों, रूप, रंग, रस, गंध और स्पर्श। तो सबसे पहले तो उसने रूप को देखा, रूप के ऊपर मोहित हो गया। तो रूप के ऊपर मोहित होने का कारण क्या है। एक तो ये देह दिखाई देता, ठीक है, ये भी एक कारण है। दूसरा मुख्य कारण ये है, बाबा ने जो हमें मर्यादाएं सिखाई हैं जो मर्यादाएं हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें विस्मृत हो जाते हैं। एक उसका और मुख्य कारण है, हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए या आकर्षित करने के लिए जो हमारे क्लॉथ कपड़े हैं, जो साधारण होने चाहिए, वो साधारणता को छोड़ हमारा पहनावा चेंज हो जाता है। टाइट ड्रेस पहनना, आकर्षण वाले कपड़े पहनना, ये हम ब्राह्मणों की मर्यादाएं नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं इन मर्यादाओं पर भी ग्रहण लग रहा है। इन मर्यादाओं को ताक में रखकर हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये मर्यादाएं ही हमारे लिए बाधक बन जाती हैं जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, बहुत सारी क्लासों में बताया, टाइट कपड़े नहीं हो, भड़कीले ना हो। हाँ, हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म जो एक जो ड्रेस है, ये हमारे एड्रेस का परिचायक है। एड्रेस अर्थात हम किस कुल के हैं, उस पहनावे से हमारे कुल की पहचान होती है। तो ड्रेस को देखना है, हमारी ड्रेस कैसी है। हाँ जी, पारदर्शी ड्रेस ना हो। मम्मा बाबा की ड्रेस देखो, सिर्फ पांव की चार उंगलियां, पांच उंगलियां मम्मा की दिखती हैं, लेकिन हमारी ड्रेस दिन प्रतिदिन कैसी होती जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग या दूसरों को देखकर बार बार ड्रेस के प्रति प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम स्थूल मर्यादाओं का भी पालन उचित तरीके से करें तो सूक्ष्म हमारा पुरुषार्थ भी दिन प्रतिदिन रंग लाएगा। तो रूप हमारा कैसा होना चाहिए, यह हमें स्वयं ही निर्धारित करना है। बाप दादा के महावाक्यों को बार बार रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा ब्राह्मणों की ऐसी मर्यादाएं हैं। तो उन मर्यादाओं का पालन करने से हमारे जीवन में जैसे एक सुरक्षा कवच बना रहता है। अगर हमारा ड्रेस उचित है तो हमारे प्रति संकल्प भी दूसरों के अच्छे ही चलेंगे। अगर हमारा ड्रेस ऐसा वैसा है तो दूसरों के संकल्प भी ऐसे चलेंगे। दूसरों को प्रभावित करना अर्थात हम अपने पाप की गठड़ी को और भरते जा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस रखनी है, जागरूकता, सावधानी। वो अजामिल क्यों गिरा, क्योंकि बेहोश हो गया, स्मृति नहीं थी। एक सेकंड बेस्मृति हुई, सारा पुरुषार्थ बह गया उसका। इसलिए कदम कदम पर ये ब्राह्मण जीवन ऐसा वैसा नहीं है, ये सहज राजयोग नहीं है, वो तो बाहर से है। अंदर जब उतरते हैं तो पता चलता है अंगारे हैं इसमें, ज्वालामुखी है ये। हाँ, उसके लिए सहज है जिसका निरंतर वैराग्य धधकता हुआ हो, जो त्याग तपस्या की मूर्त हो, जिसे ज्ञान से प्यार हो, योग से योग में रुचि हो, याद का बल जमा करने का शौक हो, उसके लिए सब सहज है। अन्यथा ये सहज राजयोग तक सहज करते करते अति सहज हो जाएगा, नहीं तो फिर हम फिर बाबा के महावाक्यों को भी अपनी सुविधा अनुसार उठा लेते हैं। जैसे पिछले साल की मुरली में, शायद अप्रैल मई की मुरली में, जो संडे की मुरलियाँ थी, तपस्या अर्थात मौज मनाना, खाओ पियो, मौज करो, मनोरंजन, तो केवल हम उन शब्दों को पकड़ लेते हैं। संगम युग मौजों का योग है, ब्रह्मा भोजन खाओ, लेकिन वो ब्रह्मा भोजन ही हमारे लिए विषाक्त बन जाता है, केवल नाम का हम खा लेते हैं उसको, लेकिन उस ब्रह्मा भोजन को पचाने के लिए हाजमा भी उतना ताकतवर चाहिए, अन्यथा वही ब्रह्मा भोजन जहर बन जाएगा, विष तुल्य बन जाएगा। तो हमें स्वयं के प्रति कड़ी नजर रखने की जरूरत है। तो एक तो ड्रेस, दूसरा अवेयरनेस, जागरूकता, हर समय मैं हूं कौन, केवल आत्मा हूं वो नहीं। समाज में भी अनेकानेक महान समाज सेवक हैं जो समाज के सामने आदर्श मूर्त हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी हमेशा जागरूक रहते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उन्हें स्मृति रहती है। हम समाज में किसके लिए आए? अगर जो देश को संभालने वाले हैं वो ही अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर दें, देश का क्या होगा फिर? तो हम तो बाबा कहते, तुम कौन हो? विश्व का उद्धार करने वालों, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। अगर हम स्वयं का उद्धार करने में ही ढीले डाले हैं तो विश्व का उद्धार कहां से होगा? बाबा कहते, तुम्हें तो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाना है, तो प्रकृति को पावन बनाने से पहले हमें स्वयं को कितना पावनता से भरपूर करना पड़ेगा। अंग अंग में वो पवित्रता की सुगंध आनी चाहिए। तो सुगंध की बात जहां आती है, दूसरा गंध। ये जो हम सेंट लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? अपने दुर्गंध को छिपाने के लिए। क्या वास्तव में उसकी जरूरत है? इतने प्रसादन, सौंदर्य प्रसादन जितने भी हैं, ये भी हमारे पुरुषार्थ को गिरा देते हैं। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, टैटू, गहने, आभूषण, क्रीम, पाउडर, डाई, बालों के डाई, नेल पॉलिश, क्या ये साधकों का जीवन है? उसमें हमारा कितना टाइम चला जाता होगा? डिओड्रेंट, बहुत सारी चीजें, बॉडी लोशन, ये सब आपने यूज किया हुआ पहले? तो ये कितना हमारा पुरुषार्थ उसमें खत्म हो जाता है। सिंपल लाइफ होनी चाहिए, अपनी दुर्गंध को छिपाने के लिए हम अपने ऊपर पूरा सेंटिमेंट छिड़क लेते हैं, केमिकल है उसमें बहुत सारे। और ना केवल वो हम अपनी दुर्गंध को छिपाते हैं, बल्कि दूसरों को में दुर्गंध फैलाते हैं। इतना कई बार पावरफुल सेंट लगाया होता है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो यहाँ एक भाई आते थे, अभी भी हैं लेकिन उधर ही हैं अभी, इतना सेंट लगाते पास में बैठना मुश्किल हो जाता था। अब वहां से उठ के जाओ तो और मुसीबत, वो सोचेगा मेरे पास से उठा के भाई। बहुत पावरफुल होता है जो सीधा सिर को चढ़ जाता है। तो यह सब चीजें जो साधकों की नहीं है। ये साधक जो ऋषि मुनि है, क्या जंगल में वो सेंट लगाते थे? हाँ, उनको देखने वाला है, क्योंकि ये साधना दिखाने वाली नहीं है, ये तो साधना गुप्त है। जो दिखाने वाली साधना वो तो गिराने वाली है। जन्म जन्म से तो संसार गिरता आया है, अगर अभी भी हम वही पुरुषार्थ करें तो और ही उल्टा हो जाएगा, वो जमा होने के बजाय और ही नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रूप, और दूसरा ये गंध। गंध अर्थात इस जो सारे साइंस सौंदर्य प्रसादन है, इनसे भी हमें कितना हमको इनका उपयोग करना चाहिए, ये भी सबको अपना अपना देखना है, क्योंकि बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है। दूसरा है, तीसरा है, पहला हो गया रूप, रंग, रूप, गंध, और फिर स्पर्श, रस। रस क्या है? ये जीवा का रस, टेस्ट। जो हम इतना अच्छा सूप पीते हैं, या रस पीते हैं, फलाहार लेते हैं, खाते हैं, वो अंदर जाके क्या बन जाता है? ताकत बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन अंत में वो क्या बनता है वो तो हम सब जानते हैं। तो जीव के वश नहीं हो जाना हमें, और इसका हमने एक पावरफुल टूल देखा सभी ने, जो हमारे जीवन में बहुत भयंकर परिवर्तन करता है, और वो है लीको डाइट। क्योंकि जो भी रिसर्च की गई है वो हर तरीके से की, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए हर दृष्टिकोण से, चाहे वो मेडिकल तरीके से या वो साइंस के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, दूसरों के अनुभव से, स्पिरिचुअलिटी से, वो सारा एक सार हम सबके सामने परोसा गया, और उसे हमें कैसे अपने जीवनचर्या में शामिल करना है वो भी हम सबको बताया गया। जिस तरीके से बताया गया, अगर उस तरीके से हम इसको अपने जीवन में शामिल करें तो निश्चित रूप से हमारे पुरुषार्थ में चार चांद जरूर लगेंगे। पुरुषार्थ का रस जो अनुभव होना चाहिए उस रस का हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा खाने पीने के रसों में हमारा जीवन ऐसे ही बीतता जाएगा और बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, और उससे अनेकानेक कईयों की बीमारियां, कितनी भयंकर बीमारियां चली गई, इतनी क्रॉनिक बीमारियां, इंसुलिन लेना बंद कर दिया, कईयों की स्पीड बढ़ गई, मोटापा कम हो गया तो चाल फास्ट हो गई, बहुत एनर्जी बढ़ गई। तो ये डाइट, ये इसके रस के वश नहीं हो जाना हमको। थोड़ा सा भी देखा कोई बात नहीं, एक ही तो है गुलाब जामुन खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये वास्तव में सारी जो पिछली बैठेगी हमारी आसक्तियों पर प्रहार था, एक जहां जहां हमारी आसक्तियां हो गई थी, और भोजन की आसक्ति में सारे विकारों की आसक्तियां जुड़ी हुई। तो रस के वश नहीं हो जाना है, जो अजामिल जैसे गुण अवगुण वो कहीं हमारे में प्रवेश न कर जाए। रूप रंग, रंग के ऊपर प्रभावित हो जाना, ये रंग तो आए दिन बदलता ही रहता है। चार दिन अगर फास्ट रखो और धूप में बैठो तो चेहरा कैसा हो जाता है? लोग बोलते क्या हो गया ये, देखने वाले परेशान हो जाते। रूप देखना ही है तो क्या रूप का क्या देखो, बाबा ने कहा मस्तक के बीच में मणि को देखो, मणि को देखेंगे तो बाप दादा के गले की माला बन जाएंगे, सांप को देखेंगे तो सांप तो काटेगा, वो तो अपना काम करेगा। तो हम रूप पर भी प्रभावित ना हो जाएं। स्पर्श, जैसे वो अजामिल उसके स्पर्श में आया तो सारे परिवार को छोड़ दिया उसने, फिर वहां से जंगल में रहने लगा, समाज से अलग। फिर एक दिन उस घर में ब्राह्मण आते हैं, किसी ने पूछा उन जो साधु संगत साधु थे, ब्रह्मचारी थे, तो कहीं अपनी यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है जहाँ हम रात को ठहर सकते हैं? तो शरारती तत्वों ने कहा हाँ, वो सामने एक ब्राह्मण का घर है, बहुत अच्छा भगत है और भगवान का बहुत ज्ञान ध्यान करता था, जबकि वो सब कुछ छोड़ चुका हुआ था, वो तो एक वेश्या के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। तो साधु संतों ने, ब्रह्मचारियों ने रात को वहाँ उसके पास रहकर भोजन ग्रहण किया। जैसे वो उसके घर में प्रवेश हुए तो जो वो अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी, वो तो ब्रह्मचारियों को देखकर प्रसन्न होगी बहुत, कि आज तो हमारे पाप धुल जाएंगे। और उसमें ब्रह्मचारियों को पता नहीं था कि यह अजामिल का घर है। थोड़ी देर में अजामिल भी आता है, जंगल से एक कोई पक्षी मार कर आता है, क्योंकि वो भी मांसाहारी भी बन गया है, वो शराबी भी है, वो चोरी भी करता है, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए डकैती भी करता है, लोगों को कष्ट देता है, हत्याएं भी करता है। एक काम बेकार के वश उसका जीवन ध्वस्त हो गया सारा, और सारे बेकार उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो एक पक्षी मार के लाता है घर में, और वो उन ब्रह्मचारियों के सामने अपनी पत्नी को देता है कि इसे पकाओ। तो जैसे वो ब्रह्मचारी देखते हैं, तो वो देखते हैं, सोचते हैं, हम तो किसी ब्राह्मण के घर में आए थे, ये तो कोई और ही है। तो फिर बाद में अजामिल ने कहा कि आप गलती से इधर आ गए हैं, मैं ब्राह्मण अभी नहीं था, अभी तो मैं अजामिल ऐसा बन गया हूँ, कामी, क्रोधी, और सौभाग्य फिर भी आपका आगमन हमारे घर में हुआ। लेकिन वो ब्रह्मचारी रहम दिल, उन्होंने उसकी सारी व्यथा सुनी। फिर बताया गया कि उसके 9 पुत्र हो चुके थे और 10वां पुत्र होने वाला था। तो ब्रह्मचारियों ने उसको कहा कि आप तो अपने 10वें पुत्र का नाम क्या रखना, नारायण, ताकि उसका नाम लेने से कम नारायण का नाम तो तुम्हारे मुख पर में आए। जो एक विष्णु का परम भक्त था, शास्त्रज्ञ था, शीलवान था, शिष्टाचारी था, अब उसके मुख पर नारायण का नाम लाने के लिए भी ब्रह्मचर्यों को पुरुषार्थ करवाना पड़ रहा है। ऐसे हम ब्राह्मण जीवन में इतने सालों से तपस्या करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, फिर भी हमारे अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट कराने के लिए आत्माओं को पुरुषार्थ कराना पड़ रहा है। उसकी उम्र उसमें 80 साल होती है, 10वां पुत्र होने वाला है। ये प्राचीन काल का इतिहास है। फिर जैसे वो ब्रह्मचारी आते हैं, तो उन्होंने कहा अगर जो आपका पुत्र होगा 10वां, उसका नाम नारायण रखना। तो फिर जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम नारायण रखा जाता है, और उससे वो बहुत मोह उसको प्यार हो जाता है, नारायण के साथ खेलना, बैठना, उठना, उससे बातें करना, उससे काम करवाना छोटे छोटे, ताकि बार बार नारायण उसके मन में छप जाए। अब वो एक अक्षर के लिए तरस रहा है कि नारायण मेरे मन में छप जाए, जो कि इतना ज्ञान पहले उसके जहन में था, उसके दिलो दिमाग में, उसके अंग प्रत्यंग में समाया था, लेकिन वो एक दृष्टिकोण, वो जो उसकी आंखें थी, वो सीन था, एक सेकंड में वो सारा धराशायी हो गया था। वो जो उत्तेजना थी, वो जो कामबाज की उत्तेजना थी, उसने उसके सारे जीवन को नरक जैसा बना दिया। वो उस कामवासना की आंधी में बह गया, एक शब्द ज्ञान के शब्द के लिए तरस रहा है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में ऐसा ना हो कि हम 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40, 50, 60 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अंत में ज्ञान के एक शब्द के लिए तरस जाए कि मैं आत्मा हूँ, वो स्मृति ना आए, उसमें हम स्थित ना हो पाए। इसलिए बाबा कहते, लंबे समय का अभ्यास है ये, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो होश में जीना है, बेहोश ना हो जाए। तो वो नारायण नाम रखता है, और फिर धीरे धीरे उसके मन में नारायण के प्रति मोह जागृत हो जाता है, और बार बार उसी का नाम लेता है। अंत में फिर उसकी मृत्यु का समय आ जाता है। फिर उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो जैसे यमदूत आते हैं, तो उसको कौन याद आता है, नारायण, 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 मुझे बचाओ। तो जैसे वो नारायण मुख से नाम लेता है, तो यमदूत भी सुनकर थोड़ा रुक जाते हैं कि ये तो नारायण का भक्त है, ये तो हमारे गुरु जी का भक्त है, तो थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो फिर किसी और, एक अजामिल नाम का कोई और व्यक्ति होता है, फिर वो उसको लेकर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो फिर ये कुछ साल और, 10-12 साल और जीता है। तो ऐसे ही अब हम सभी उसी मोड़ पर हैं। इस संगम युग के अगर 100 साल के हिसाब से देखा है, तो कितने साल बाकी हैं, और 88 ईयर हो चुके हैं। ये तो वैसे आंकड़े वैसे बताए जा रहे हैं, संगम युग आगे कितना है कोई भरोसा नहीं है, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते अचानक होगा, अंत तक मैं नहीं बताऊंगा। तो अचानक के खेल में हम सबको एकदम एवरेडी रहना है, ऐसा ना हो कि अंत में हम भी कोई ज्ञान का पॉइंट ढूंढे कि अभी हम कुछ ऋषि डिटैच होने के लिए क्या करना है, कोई मुरली ढूंढने, कोई क्लास होने, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। केवल हमारे मन बुद्धि में जो हमने लंबे समय का अभ्यास किया हुआ है, जिन चीज़ों को हमने अपने आचरण में लाया हुआ है, वो ही स्वतः कार्य करेंगी, जिनको हमने अपनी आदत बना रखा हुआ है, लंबे समय से जिसका अभ्यास किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे बड़ा टूल है बॉडी से डिटैच, अशरीरीपन का अनुभव। अगर काम वासना से मुक्ति होने की मुक्त होना चाहते हैं तो लंबे समय से एक सेकंड में बॉडी से डिटैच। जैसे हम ऊपर की अवस्था में जाते हैं, इस देह की सारी स्मृतियां गिर जाती हैं, देह के सारे संबंध लोप हो जाते हैं, लेकिन यह अभ्यास लंबे समय का चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन की दिनचर्या में अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, जब भी मौका मिले बॉडी से डिटैच हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, विश्राम करो आकर। क्योंकि जो अगर एक और चीज़ देखा जाए, ये काम हमारी रगों में क्यों समा गया हुआ है, क्योंकि जब भी हमारा जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होता है, तो माँ बाप की चेष्टा काम विकार की होती है। शादी पहले ये नहीं सोचे जाते कि हम बच्चे पैदा करेंगे उनके ये करेंगे, नहीं, सबसे पहले काम विकार की तृप्ति को, काम की तृप्ति के लिए शादी की जाती है। और वो सारी जिन मनोभावनाओं के साथ माँ बाप ने हम सबको जन्म दिया है, वो सारी विकृतियाँ, वो सारे संकल्प, वो सारे संस्कार रग रग में समा गए हुए। और ये इस जन्म का नहीं है, 63 जन्मों के विकार, 63 जन्मों की काम वासना, अनेका अनेक आत्माओं की, वो हम सब के अंदर समाई हुई है। देह की उत्पत्ति कैसे है, विकारों से है, और स्वर्ग की उत्पत्ति कैसे है, भोग बल से नहीं, योग बल से है वो। और ये सारे भोग हैं, इसलिए आत्मा बार बार भोगों की तरफ आकर्षित होती है, बार बार आकर्षित हो रही है, चाहे वो खाने में, चाहे वो पीने में, चाहे घूमने में, चाहे देखने में। तो यह सब चीजें हैं। और दूसरा मुख्य बात, उससे ज्यादा जो वर्तमान में संसार प्रभावित हो रहा है, वो सबसे बड़ी एडिक्शन है सिनेमा। और हर एक के पास सिनेमा चलकर आ गया है, अभी सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिनेमा जेब में पहुंच गया है। सिनेमा अर्थात सिन की माँ, पाप की माँ, पाप की माँ ही हमारे हाथ में है, तो बाल बच्चे तो स्वतः उसके आसपास ही होंगे। सारा संसार किसके आकर्षण में है, विकारों के आकर्षण में है। मोबाइल में जब भी हम देखते हैं, कोई भी चीज देखो, एडवर्टाइजमेंट किसी की आती है, वो ही आकर्षण। और कोई भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी के मन में छप जाए, उसी तरीके से उसको परोसा जाता है, बार बार उसको दिखाया जाता है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर 10-15 बार देख ली उस एडवर्टाइजमेंट के, उस विज्ञापन को जानने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए, धीरे धीरे संकल्पों की जागृति होगी। देखे तो उसे आखिर है क्या ये चीज, क्यों इसको बार बार दिखाया जाए, कुछ तो जरूर होगा। आज मीडिया में अधिकतर जो कमाई का साधन क्या चीज है, जो इतना बड़ा न्यूज़पेपर छपता है, कितने का होता है वो, 5 रुपए का। लेकिन क्या 5 रुपए में इतना हो सकता है वो, नहीं, सब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के सिर पर, विज्ञापन के बल पर सारी आजीविका चल रही है। और विज्ञापन अधिकतर किस चीज के होते हैं, दूसरों को आकर्षण करने के लिए, सारे कमाई के साधन है वो तो। और विज्ञापन का दृश्य भी कैसा होता है वो, ताकि किसी के दिलो दिमाग में घुस जाए वो। तो सारी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है अभी, मोबाइल में। इसलिए डिजिटल संन्यास की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारी साधना साधनों में तो नहीं होती जा रही है दिन प्रतिदिन। वर्तमान में कहा जाता है कि ऐसी बातें क्यों सुनाई जाती हैं, दादियों के समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन दादियों ने जो साधना की है वो साधना अभी नहीं है। वो जो साधना थी साधन विहीन साधना थी वो, और अभी हम साधनों को पहले एकत्रित करते हैं फिर साधना आरंभ करते हैं। बोलेंगे कि पहले तो साधन थे नहीं इसलिए यूज नहीं किए, साधन तो पहले भी बहुत थे, इतने ऊंचे ऊंचे घराने के वो आत्माएं एक धक से छोड़ दिया, वो साधारण बात नहीं है। इतनी समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा, इतने ऊंचे कुल के वो लोग एक धक से छोड़ दिया। हाँ जी, आप कितना फैशनेबल थे पहले, दादियां खुद वर्णन करती हैं, लेकिन सब छोड़ दिया क्योंकि साधना का रस, उसका स्वाद चख लिया। उस साधना के रस के आगे संसार के सभी साधनों के रस धोखा देने वाले हैं, घातक हैं, खौफनाक हैं, वो हमारे जीवन को दीवों की तरह खाने वाले हैं। वो सोचते हैं थोड़ा सा देखा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा करते 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 एक दिन भयंकर हथौड़ा लगेगा और सारा हमारा पुरुषार्थ चकनाचूर हो जाएगा। तो इस सिनेमा से भी हमको दूरी बना के रखनी है, नहीं तो वो दृश्य बार बार हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में अवरोध हम खुद ही खड़ा कर देंगे, वो बाधा बन जाएंगे, हम खुद ही उन जंजीरों में जकड़े रहेंगे, छूट नहीं पाएंगे और दूसरा कोई छुड़ाने आएगा भी नहीं। स्वयं को स्वयं ही छुड़ाना है, क्योंकि हमने स्वयं को कैसे बांधा है वो हमें स्वयं ही पता है, दूसरा बताएगा, लेकिन जो हमने अपने आप को किस तरीके से कौन सी ऐसी विसंगतियों में बांध के रखा है वो दूसरे को पता नहीं है, वो हमें खुद ही पता है कैसे हमने वो गांठ लगाई है, वो खोलनी भी खुद को ही है। इसलिए सारा दृष्टिकोण हमारा स्वयं के ऊपर होना चाहिए, भीतर झांकना है कि अभी भी कौन कौन सी ऐसी गलतियां मैं बार बार कर रहा हूं जिनसे मैं छूट नहीं पा रहा हूं, उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो देखना है कुछ एक बातें, तो सबसे पहले तो हमें स्वयं की देह का दर्शन करना है, स्वयं के देह के प्रति वैराग्य जागृत करना है। तो बार बार अंदर में देखना है इस देह के अंदर है क्या, दूसरे के देह के प्रति वैराग्य तभी होगा जब हमारा स्वयं की देह के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। देह का दर्शन, दूसरा देही का दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का निवास स्थान, आत्मा के रिलेशन, आत्मा की क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं, आत्मा का सौंदर्य। तीसरा बताया ड्रेस, हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, परिधान। नेक्स्ट है, एक चीज है कि दूसरों से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है, चाहे बहन है या चाहे भाई है, चाहे कोई पुराना है चाहे कोई नया है, दूरी बनाकर बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे संबंधों में नजदीकियां आने से विकृतियां जागृत होने लगती हैं। कि इसकी साधना कैसी है हम नहीं कह सकते, वो स्वयं की साधना लड़खड़ा रही है तो दूसरों की संगत है हमें डुबा देगी वो, इसलिए दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। और समझ से दूरी, ऐसा नहीं है कि सेवा आए तो भी हम दूरी बना दें उनसे, नहीं, जो बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी में नहीं आना है। नेक्स्ट अगला एक है दोष दृष्टि, जो दर्शन में बताया दोष दृष्टि, दूसरों के दोषों का भी चिंतन करो, कौन कौन से, वैसे बाबा कहते गुणग्राह की दृष्टि, लेकिन दोष भी जिससे हमारा अटैचमेंट हो गया उससे देखो उसमें कौन कौन से दोष हैं, अभी जिससे हमारी साधना भंग होती जा रही है। डिजिटल संन्यास, डाइट और धर्मराज का डर। तो वर्तमान समय को देखते हुए हमें योग की शक्ति को बढ़ाना है, सारे दिन में थोड़ा भी जब भी मौका मिले छोटे छोटे अभ्यास, जैसे परसों एक बताया था बहुत पावरफुल टूल अधिष्ठान। तो किसी ने पूछा था एक घंटे करने के बजाय 10 मिनट भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 5 मिनट करो, फिर 5 मिनट वो पूरा बैठ जाओ, फिर थोड़ा टाइम छोड़ के फिर अगले 5 मिनट करो, ऐसे सारे दिन में बार बार करो और धीरे धीरे वो 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे, 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। जो लंबे समय से बैठने की आदत नहीं होती है, बेचैन मन क्यों बेचैन होता है, बैठते हैं 5 मिनट में बेचैनी कहाँ हो रही है, हमारे संकल्प ही हमको बेचैन कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते कम से कम आकर बैठो तो सही, भले मन भाग रहा है इधर उधर, बैठो तुम, धीरे 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 मन को थोड़ा काम देंगे, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर हो गया शरीर भी स्थिर हो जाएगा, वो कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। तो धीरे धीरे अधिष्ठान को बढ़ाना है, योग की शक्ति को बढ़ाना है, अपनी प्योरिटी के ऊपर पूरा काम करना है, और उसके लिए प्योरिटी का मुख्य स्रोत देखा भोजन। भोजन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए 5 बातें भी बताई थी, भोजन कैसे करना है, साइलेंस में करना है, स्लो स्लो करना है, सॉलिट्यूड अर्थात एकांत में करना है, श्रेष्ठ सम्मान के साथ करना है, हाँ जी, सतत जागरूकता उसके दृष्टि पूरी दृष्टि देकर खाना है। भोजन को भोजन का समय नहीं, भोजन हमारा योग का समय बन जाए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, गहराई से हम देखेंगे जितने असुर बैठे हुए हैं, ये जो पूरी भट्टी पीछे हुई है 108 दिन की क्रांति, असंभव संभव, उससे ये 21 असुर निकले हैं, उसमें से आज पहला था अजामिल, अजामिल का सहार कैसे करना है। तो ये सारी बातें चिंतन की हैं कि रूप रस गंध स्पर्श ये सब चीजें कैसे उनको उनका सहार करना है, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन इन सब से ऊपर हमको साक्षी अवस्था में रहकर अपने पुरुषार्थ के प्रति सजग होकर आगे बढ़ते जाना है। तो प्रभावित नहीं होना है, अपनी देह का चिंतन, देह से दूरी, देह का अभ्यास, डिजिटल संन्यास, संसाधनों के वश नहीं होना है, योग की शक्ति को बढ़ाना है, प्योरिटी को बढ़ाना है। तीसरा एक मुख्य टूल है अपने ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है। देखा गया है जो ज्ञान के चिंतन में रहते हैं वो अनेकानेक परिस्थितियों में भी मन अचल अडोल रहता है, देखते हैं कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है, सामने वाले कुछ बोलते रहते हैं लेकिन वो अपनी अवस्था में स्थिर रहते हैं, और जो ज्ञान के चिंतन की कमी है 1 सेकंड में हलचल में आ जाते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला और वो हमारे में है भी नहीं चीज, बिना किसी बात के कोई उत्तेजना पूर्वक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उत्तेजित करते हैं और हम हलचल में आ जाते हैं, अर्थात हमारे ज्ञान चिंतन में कमी है। तो ज्ञान चिंतन तो सबसे पहला टूल है, जितना ज्ञान का हम चिंतन करते जाएंगे तो योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योग स्वतः लग जाएगा, क्योंकि योग के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान का विस्तार चाहिए, हाँ दोनों का बैलेंस, ज्ञान योग का बैलेंस, कौन से झूले, आनंद और मनोरंजन, ज्ञान योग की दो रस्सियां, और ये जीवन कैसा आनंद और मनोरंजन उसका अनुभव होना चाहिए। तो कितने सारे टूल हैं, तो ज्ञान चिंतन को बढ़ाना है, अब ये जो यहाँ जो चिंतन किया जाता है उस चिंतन को आगे बढ़ाना है, खुद आगे, क्यों बहुत सारी बातें, सबका चिंतन अपना अपना हो सकता है, सबका अजामिल अपना अपना है, किस रूप से बैठा हुआ है वो, कौन सी अंदर गुफा में बैठा हुआ है, अंदर में कितना अंधकार है, कहाँ वो छिप कर बैठा हुआ है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, चाहे वो खाने के संस्कार हैं, घूमने के संस्कार हैं, देखने के संस्कार हैं, किसी को तंग करने के संस्कार हैं, स्वयं ही तंग होने के संस्कार हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर वो विकृतियां हैं ही हैं, और खुद ही हम स्वयं के लिए ही विकृति बन जाते हैं, स्वयं के लिए ही बाधा बन जाते हैं, स्वयं के लिए अर्थात स्वयं की कमजोरियां ही हमारे लिए बाधा बन जाती हैं। तो ज्ञान का चिंतन करने से, ज्ञान एक जैसे टॉर्च की तरह काम करता है जो हमारी अपनी विशेषताओं से भी, अपनी योग्यताओं से भी, अपने कमजोरियों से भी अवगत कराता है, ज्ञान जैसे, उस दिन बताया था ना, ज्ञान जैसे एक आग की तरह है जो हमारी कमजोरियों को जला के रख देगा। योग से भी पावरफुल वैसे ज्ञान है अगर देखा जाए तो, है जी। ज्ञान एक पानी भी और तलवार भी है जो सारे बंधनों को काट देगा। तो ज्ञान की तलवार को धारदार बनाने के लिए निरंतर उसको चिंतन की धार लगाते रहना है। जितना हमारे चिंतन में प्रखरता आती जाएगी उतना हमारे पुरुषार्थ में निखार आता जाएगा। तो ज्ञान चिंतन को भी बढ़ाना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं, तो सभी अपने अपने स्तर पर जो हमारे अंदर आसुर विकृतियां हैं उनको देखना है, उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे जोश के साथ पूरी समझ के साथ उनका सामना करना है, उनको निकालने का प्रयास करना है। तो ऐसे देखा ये अजामिल कैसे उसका सहार होगा, तो ये सब चीजें देखी। हाँ, नारायण नारायण करते करते फिर आखिर में उसको लेने के लिए आए तो उसके 12 साल उम्र बढ़ गई है। और फिर हाँ, विष्णु के दूत और यमदूत में झगड़ा होता है तो फिर बाद में कौन ले गया? वो तो दूसरे अजामिल को लेके गया ना, बताया ना बीच में, फिर दूसरे अजामिल को, विष्णु के यमदूत और विष्णु के और दूसरे उसके दूत आते हैं धर्मराज, यमदूत के अलग अलग, दोनों के दूत अलग अलग आते हैं। तो फिर आखिर में तो नारायण की नारायण नाम लिए इसलिए उस बच जाता है। अर्थात हम ज्ञान का चिंतन मनन करते रहेंगे तो हम बच जाएंगे, तो बाबा हमारी सुरक्षा करेगा। तो गलती से भी अगर इस ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। गलती से भी कहा जाता ना, अगर संसार में मान्यता है थोड़ा सा भी अगर टोली खा ली गए काम से। यहाँ एक कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर हैं, अभी भी इधर ही हैं, तो यहाँ पीस पार्क के रास्ते में जो टोल नाका लगा हुआ है तो वहां बसों को जाने नहीं देते हैं। तो वहां बस माताओं को, सेवाधारी माताओं को लेकर जा रही थी तो वहां रोक दी बस उसने, बोले जाने नहीं देंगे बस, क्योंकि बसों को छुट्टी नहीं है, आपने पहले छुट्टी नहीं ली। हालांकि दूसरे इंस्पेक्टर को बोला हुआ था छुट्टी के लिए, तो भाई टोली लेकर गया हुआ था साथ में, बोला भाई साहब भगवान का तो काम चल रहा है, आप भी थोड़ा उसमें सहयोगी बन जाओ, ये आपके लिए प्रसाद लाया। बोला बस तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन प्रसाद नहीं मैं खाऊंगा, इसमें जादू है, थोड़ा सा भी खाया गलती से तो मैं गया काम से, ये तो नहीं मैं खाऊंगा, बस तुम ले जाओ टोली नहीं मैं खाऊंगा। तो गलती से इस ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। और सबसे पहले सेंटर में प्रवेश होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कहा जाता है ना किसी के दिल को जीतना है तो उसका रास्ता कहां से जाता है, पेट से। तो किसी को खिलाया तो गए काम से। तो ये बाबा का प्रसाद, एक ज्ञान एक प्रसाद की तरह प्रभु देन था, लास्ट मुरली में था ना व्यक्तवाणी में कि विशेषताएं क्या है, प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। तो इस प्रसाद को जितना बांटेंगे आत्मसात करेंगे उतना हम अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। ओम शांति। Thank you.
ध्वस्त हो जाए अनै।